Cloudy. दो चार को पकड़ लाइए इधर, पकड़ लाइए उनको, अभी पुलिस के हवाले कर दो, पकड़ लाओ यहाँ जलेमन। तो आज अयोध्या में बड़ी खुशी मच रही होगी, लाखों लोगों की आज भीड़ होगी, कितने लाख आदमी 40-50 लाख गए होंगे। एक बार मैं आ रहा था नवद्वीप से, उसी दिन रामनवमी के दिन रात में मेरी इच्छा थी अयोध्या होकर के तब फिर मथुरा जाऊंगा। इतनी भीड़ ऊपर नीचे इधर उधर में कहीं नहीं जगह नहीं, फिर लौट करके मैं मथुरा आ गया, उसी में नहीं गया। आज कितना उल्लास होगा वहां, लाखों करोड़ों सरजू में स्नान कर रहे हैं, स्नान करके रामलला का दर्शन करेंगे। आज दो भक्तों में कुछ मुठभेड़ हो गई। एक ने कहा कि हमारे राम श्रेष्ठ हैं और दूसरे ने कहा कि हमारे कृष्ण। जमुना के तटवर्ती वृंदावन वाले महात्मा जी ने कहा ये कृष्ण 16 कलाओं में हमारे पूर्ण हैं और राम कितने हैं, 12 कलाएं, इसलिए राम छोटे हैं। और इन्होंने कहा जैसे कृष्ण बड़े हैं। उसने कहा चंद्र और सूर्य दो हैं, सूरज में 12 कलाएं होती हैं और चंद्र में होता है 16 कलाएं, इसलिए चंद्रवंश में आने से रामचंद्र 16 कलाएं, कृष्ण 16 कलाओं में है, इसलिए वो 16 कलाओं में पूर्ण है। और रामचंद्र जी सूरज के 12 कलाएं हैं, इसलिए 12 कलाओं में ही राम पूर्ण है, इसलिए पूर्ण दोनों है, इन्हें छोटे बड़े नहीं। एक ने कहा तुम्हारे प्रभु ने जन्म लेते ही एक नारी का वध किया, मां निष्ठु जन्मते ही और मैया का बन करके आने वाली पुतला का वध किया, बड़े निष्ठुर थे। तो उसने कहा अयोध्या वाले ने जो तुम्हारे कृष्ण का राम वाले ने कहा तुम्हारे राम क्या है, वो कम निष्ठुर हैं, अपने लीला आरंभ करने के पश्चात ही उन्होंने नारी का वध किया। कौन नारी का, ताड़ुका का उसने वध करके था और लीला आरंभ किया, वो भी कम नहीं है। उन्होंने कहा जे हमारे राम मर जाता पुरुषोत्तम है, तो यहाँ के ब्रजवासी ने उत्तर दिया तुम्हारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा हमने देखी है। कैसी, एक नारी गई, कहते हैं कि वो सब कुछ, कोई भी आकांक्षा हो तो राम पूर्ण कर देते हैं। तो एक सुंदर नारी की का रूप धारण करके रावण जैसी कुलीन ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाली वो गई राम के पास में, जे मैं आपके गुणों को और सौंदर्य को देकर के रीछ चुकी हूँ, मैंने अपना हृदय दे दिया है। तो राम ने क्या किया, उसके नाक और कान कटवा लिए। ये कौन मर्यादा है, कोई मर्यादा है, अरे बंदर का मांस कोई नहीं खाता। और कोई भी शिकारी भी बंदर का वध नहीं करता, तो तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है ये बाली का वध किस लिए किया, बंदर का, वो भी मर्यादा का पालन करते हुए किया। बलि को ऐसा वर था कोई भी उसे लड़ने जाएगा उसका आधा बल ले लेता था, अपना तो बल तो है ही है और उस लड़ने वाले का आधा बल ले लेता था, जिससे कि किसी को भी वो जान से मार डालता था या हरा देता था। इसलिए राम छिप करके मारे, पेड़ की ओट से मारा, युद्ध में मारा नहीं, तो ये कौन सी मर्यादा है। इस तरह से दोनों में तर्क वितर्क चल रहा है। कृष्णचंद्र जी और राम दो नहीं हैं, एक ही हैं। इस चीज को समझा जाए, एक पूर्ण चंद्र है, दोनों ही पूर्ण चंद्र है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, तत्वतः एक ही चीज है। जब कृष्ण जगत में मर्यादा को स्थापन करने के लिए आते हैं, जैसे अपनी पत्नी पर भी यदि कोई उंगली उठा दे तो प्रजा के लिए, उसका मन खुश रखने के लिए, यद्यपि उस स्त्री का दोष नहीं या पवित्र है, तो भी उसको छोड़ सकते हैं, त्याग दे सकते हैं। यह राम के लिए ही संभव, दूसरों के लिए नहीं। बल्कि सीता जी का वो त्याग नहीं करते, त्याग करते हैं किसका? महारानी सीता जी का। राजा रानी का त्याग कर रहा है, रामचंद्र जी सीता जी को कभी भी त्याग नहीं किया। यदि त्याग करते तो सीता जी की सोने की मूर्ति बना करके उसकी पूजा नहीं करते। इसलिए जब सीता जी ये सुनती हैं तो कितना आनंदित हुई होंगी, ये हमको राम नहीं छोड़ सकते, सचमुच में नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी शक्ति सीता जी हैं। इसलिए शक्ति शक्ति मतो रभेदा, एक ही चीज। यही कृष्णचंद्र जी मर्यादा को स्थापन करने के लिए वो राम ही बनते हैं, कृष्ण ही हैं। और वही कृष्ण मर्यादा की भी मर्यादा, प्रेम की मर्यादा रखने के लिए, जो साधारण लौकिक मर्यादा से भी प्रेम की मर्यादा बहुत अधिक है, इसकी स्थापन करने के लिए स्वयं कृष्ण ही। इसलिए रामचंद्र जी में अढ़ाई रस बतलाया जाता है। जब कृष्ण ही अढ़ाई के रस में जगत में आते हैं, अढ़ाई माने उनको कोई शांत रस से, दास्य रस से और आधा सख या आधा बात्सल्य से उनका भजन कर सकता है। सख रूप में रामचंद्र जी का नहीं हो सकता, ये कृष्ण लीला में ही होगा। सुग्रीव जी को सखा बनाया, निषाद राज को सखा बनाया, भरत जी और लक्ष्मण जी उनके सखा और भाई ही हैं, किंतु लक्ष्मण जी भी भरत जी भी राम के पलंग पर नहीं बैठ सकते, ये संभव पर नहीं है। हनुमान की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, ये मर्यादा है, मर्यादा की रक्षा करने के लिए कृष्ण ही राम रूप में आते हैं। कृष्ण लीला में उनका कोई भी सखा यदि कृष्ण सो रहे हो पलंग पर, तो वो पलंग पर चढ़ जाएगा, मधुमंगल श्रीदाम दाम मधुमंगल सभी, और कृष्ण को सोते ही उठाएगा, अरे अभी सो रहा है, उसको जबरदस्ती पकड़ करके उठा लेगा, अरे तरे गाली भी दे सकता है, सारे इत्यादि भी कर सकते हैं कृष्ण को, अपना जूठा खिला सकते हैं। ये सब भ्रम रहित परम विषम भाव उनमें है। सीता जी राम का कभी किसी विषय में उत्तर नहीं दे सकती, उनको दो दो बार वनवास दिया, त्याग दिया, किंतु सीता जी ने कुछ कहा, मैंने घर से जाऊंगी तुम्हारे ऊपर मैं केस करूंगी, कहा कभी? यह संभव पर कभी भी कुछ नहीं, जब कहा बस घर छोड़ दिया। वन में जाकर के छोड़ने पर भी उन्हें वही राम का पूजा करती हैं, राम का स्मरण करती हैं। आज हम बल्कि वो स्त्री जिसको किसी ने छोड़ दिया उसके पति ने, अब वो पाएगी तो यदि उसको मिले ना राइफल, राइफल तो नहीं पिस्तौल मिले तो उसको साथ ही साथ में शूट कर देगी। तो आदर्श महिला के रूप में सीता जी, वही राधा जी सीता जी के रूप में आई हैं। इसलिए रामचंद्र जी भी पूर्ण हैं और कृष्ण क्या हैं? पूर्णतम ही है, पूर्णतर अपूर्णतम हैं, रस की दृष्टि से तत्व की दृष्टि से दोनों एक है। उदाहरण के लिए समझो, चांद पूर्णिमा को पूरा प्रकाश देता है और अष्टमी के दिन में कितना देता है? कुछ कम देता है। क्यों? अष्टमी के दिन वह द्वादशा टेढ़ा हो जाता है, क्यों? चंद्रमा टेढ़ा नहीं होता है, उसकी परछाई सूरज की जो पड़ती है चंद्र पर वो उतना ही दिखाई देता, चंद्र सब समय पूर्ण ही है किंतु उसका कुछ भाग जैसा सूर्य का प्रकाश उस पर जाता है वो दिखता है अष्टमी का चांद। उसी तरह से कृष्ण ही समस्त अवतारों में कृष्ण ही है किंतु उपासना की कमी और बेसी से उनको हम कृष्ण के रूप में, कभी निशिंग के रूप में, कभी बामन के रूप में, कभी बराह देव के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी निशिंग के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में दर्शन करते हैं। किंतु है एक ही तरह, 16 कलाएं जैसे चंद्र में होती है, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही भगवान में कर्म विकास से मनुष्य के कर्म विकास के अनुसार में पहले मीना अवतार, मत्स्यावतार, इसके बाद में कुर्मा, बरा, सबसे पहले मछली के रूप में जल में ही रहेंगे, जलचर के रूप में उनकी उपासना के लिए आते हैं। इसके बाद में ऐसा जो दोनों तरफ में पानी में भी हो और बाहर में भी, वो कौन है? कछुआ, कुर्मा, पानी में भी। इसके बाद में बराह रूप, बराह रूप रहता है जमीन में किंतु पानी में भी रह सकता है, चला जा सकता है, सूंघने की बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। इसीलिए जब वेदों को चुरा लिया लोगों ने, असुरों ने, या पृथ्वी को ही चुरा लिया तो उन्होंने सूंघ करके एकदम कूद पड़े उस जल में, और जल में जाकर के भीतर से जाकर के पृथ्वी को उद्धार करके अपनी धुरी पर रख दिया सूंघ करके। पृथ्वी में गंध होता है इसलिए वो कृष्ण ही ये काम को करते हैं, धर्म की स्थापना भी करते हैं, ये सब करते हैं। किंतु ये सखा के रूप में कुर्म का कोई होगा? कोई नहीं होगा, इनके सेवक बहुत कम लोग होते हैं। ये जगत का उद्धार करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कभी कभी आते हैं, आते हैं माने कृष्ण ही उस रूप में आते हैं। इसके बाद में न मनुष्य न जानवर, निशिंह देव के रूप में आते हैं। उसमें भी उनकी लीला नहीं होती, क्षणिक लीला, ये सब क्षणिक लीलाएं हैं। निशिंह देव की लीला कितनी हुई थी? बस शाम को हुई, बस समाप्त हो गई। इसके बाद में परशुराम, निशिंह जी के बाद में परशुराम जी की लीला हुई, कुछ दिनों के लिए दिखलाया। इनको सत्यावेश अवतार कहते हैं, किसी योग्य जीव में भगवान का शक्ति जब प्रवेश होती है उसको भी अवतार कहते हैं, किंतु सत्यावेश अवतार। ये कैसे? जंगली मनुष्य का सबको मारना काटना बस यही, उस समय क्षत्रियो और ब्राह्मणों में चल रहा था, क्षत्रिय कम नहीं है ब्राह्मण, ब्राह्मण वाले कुछ अपने धर्म को छोड़ करके बड़े कुछ ऐसे हो गए थे, उनको अभिमान हो गया था, ब्राह्मण कुल में जन्मने पर भी वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय ने कहा जी हम कैसे कम हैं, हम भी भगवान की उपासना में आपसे कम नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण में जन्म लेकर के रावण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के राक्षस कहलाया, उसी तरह से कोई शूद्र कुल में जन्म लेने पर भी वो ब्राह्मण का काम करने से वो ब्राह्मण कहला सकता है, उसको ऐसी मान्यता देनी होगी। ये युद्ध का काम था, क्षत्रिय लोग दूसरे जातियों को मिल करके और ब्राह्मणों का मुकाबला किया, तुम लोग ब्राह्मण का काम नहीं करेगा तो ब्राह्मण नहीं कहला सकता, ये इन लोगों का कहना था। इसलिए अयोध्या में परशुराम जी थे ब्राह्मण की तरफ में, उन्होंने कहा ब्राह्मण का लड़का होने पर ब्राह्मण की तरफ में होगा, ब्राह्मण ही माने जाए, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा और भगवान का भजन नहीं करेगा तो भी ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, गुण के अनुसार में होगा, चतुर वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, सब गुण और कर्म प्रधान है। यदि किसी नीच जाति में भी, जो हम जिसको कहते हैं जाति, कोई भी नीच नहीं है, बाएं हाथ पैखाना साफ करता है अपना, दाहिना हाथ पानी देता है, तो बाएं हाथ कम हो गया, बाएं हाथ अपवित्र है? नहीं। यदि पैर में कांटा यदि गड़ गया तो हाथ क्या करेंगे? पैर महाराज की सेवा करेंगे, इसलिए पैर गंदा है चलता है, ऐसा नहीं विचार। इसलिए जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो शूद्र हैं, जो शरीर के लिए शोक करते हैं ये शूद्र हैं। यदि उसी में व्यास जी आए, नारद जी आए, तो जगत के पूज्य हुए कि नहीं?
उसी कुल में आए, शूद्र कुल में नारद जी भी आए हैं, कृष्ण कौन कुल में आए हैं? वैश्य भी और शूद्र भी हो सकते हैं। कैसे? वैश्यों में भी दो जातियां हैं, एक गोपालन इत्यादि वाणिज्य व्यवसाय करती है, गोपालन, एक कृषि करती है, उसमें बहुत से ये विभाग है। यदि वो कृषि इत्यादि करते हैं तो जानवर उसे मरते हैं, कृषि में जानवर मरेंगे कि नहीं? छोटे 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 कीड़े मकोड़े। इसलिए इन कृषि करने वाले वैश्यों की अपेक्षा, घोषों की अपेक्षा, ये ज्यादा लोग जो कि पोष पालन घोष करते हैं, ये उसे कुछ श्रेष्ठ हैं। तो कृष्ण जिस कुल में आए उसको किसी दृष्टि से यदि आज के दृष्टि से विचार किया तो शूद्र कुल में भी हो सकते हैं। मान लिया कि जैसे वो घोष कुल में आए, वैश्य ही कुल में आए, तो वैश्य की पूजा लोग करते हैं, उसका जूठा खाते हैं, भोग लगाते हैं, ये क्यों? इसलिए कृष्ण उस समय भी भगवान ही हैं। शूद्र कुल माने से या वैश्य कुल माने से, रामचंद्र जी क्षत्रिय कुल माने से क्षत्रिय नहीं होंगे, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में आता है और ब्राह्मणों के उसमें गुण नहीं है तो वो शूद्र हैं, उनका दिया हुआ कोई चीज ना लिया जाए। और यदि निम्न कुल में भी यदि अच्छे गुण जन में हो, ब्राह्मणों के गुण हो, क्षमा हो, समदर्शिता हो, लोक प्रकार लोक उपकार की भावना हो, और सबसे अधिक यदि ब्रह्म तत्व को जानता है नारद और इनके समान व्यास के समान, तो और श्रेष्ठ है। सुखदेव जी किसके पुत्र है? व्यास जी कौन जाति है? कौन जाति है? एक तो उनकी जाति निरूपण नहीं हो सकती, किस लिए? नहीं नहीं, इसलिए नहीं। उनकी मैया कौन सी जाति है और पिता उसके कौन है, और उनका जन्म ठीक रूप में हुआ? मैया जब कुंवारी थी तभी उनका जन्म हो गया, तब उसको क्या कहेंगे? अभी उनकी मैया का विवाह नहीं हुआ और उसी समय में ये जमुना में ही पार कर रही थी, पार करा रही थी उसकी मैया सत्यवती किसको? पराशर मुनि को। और प्रकार उनके उनसे बेटा हो गया, तो ये कौन सा बेटा हुआ, कौन जाति का हुआ? इसको बेजन्मा कहेंगे या क्या कहेंगे? यदि कि ऐसा कहा तो वो नरक में जाएगा। क्यों? उनका गुण देखो। आज विश्व ब्रह्मांड के ये व्यास जी और उनके पुत्र जो है सुखदेव गोस्वामी जी, ये जगत पूज्य हैं। इसलिए गुण प्रधान है, इस चीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान और वैष्णव तत्ववेता लोगों की जाति कुछ नहीं होती, जाति से अतीत होते हैं, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए उस समय में ये जो विवाद चल रहा था किस चीज का, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का, कौन जो शरीर में आत्मबुद्धि करके अपने को क्षत्रिय समझते हैं, और वो जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कुल में पैदा होने पर अपने को ब्राह्मण कर रहे थे, दोनों ही शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाले थे। यदि वो जानते जे हम जीव भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के अंश हैं, तो झगड़ा होता? इसलिए दोनों गलत थे। इसलिए उन्होंने कितना 17 बार या 18 बार पृथ्वी का जितने भी क्षत्रिय थे उनका ध्वंस किया, उनके रक्त से वहां के सरोवर भर दिए कुरुक्षेत्र में। अंत में राम क्षत्रिय कुल में आए, परशुराम जी उनसे जाकर के भिड़ गए, एक तरफ में क्षत्रिय और दूसरी तरफ में ब्राह्मण, किसकी विजय हुई? किसी की जीतने जीत हुई? ब्रह्म की जीत हुई, भगवान की जीत हुई। वो समझ नहीं रहे थे इस तत्व को, इसलिए क्षत्रिय ब्राह्मण सभी एक ही हैं। पहले परमहंस से जाति थी, जातियां विभिन्न नहीं थी, जन्म से सभी लोग शूद्र ही जन्म होते हैं, पैदा होते हैं, संस्कार से, प्राचीन गुणों के संस्कार से, पूर्व जन्म के संस्कार से, जिसका स्वभाव जैसा होता है वैसा उसको मानना चाहिए। किंतु बीच में हमारी जाति प्रथा लड़ खड़ा गई, गड़बड़ हो गई, इसलिए दोनों में लड़ाई हुई। अंत में राम के सामने ब्राह्मणत्व उस समय का हार गया। केवल शरीर से जन्म लेने से ही ब्राह्मण नहीं है, ये क्रोधी थे परशुराम। जितना क्रोध करते हैं लक्ष्मण जी उनको उतना ही रिझाते हैं, उतना ही कर्म करते हैं, आराम अपनी शक्ति खींच रहे हैं। यदि ब्राह्मणों करके क्रोधी हुआ, दोषों से लड़ाई झगड़ा करता है, सहिष्णुता नहीं हुई, तो वो ब्राह्मण कैसा? तथा तो वो दैत्य दानव अथवा रावण की तरफ, वो ब्राह्मण कुल में एक ऋषि का लड़का होता, वो अभी राक्षस कहलाया। इसलिए अपने विचार से वैष्णव लोग ये सब का विचार नहीं करते, ऊपरी जाति का विचार नहीं करते। जो ऐसा भी भगवान के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ममई वंशो, ये यदि विचार आ जाता जी, हम ही सभी भगवान के दास हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में रहने वाले भी लोग जो गोमांस इत्यादि भूल से खाते हैं, वो लोग भी भगवान के ही अंश हैं। पृथ्वी में जहाँ जितने जीव कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि हाथी, सूकर, गधा, गाय, ब्राह्मण, चंडाल, सभी उनके अंश हैं। अपने अपने कर्मों से ऐसे हुए। यदि कर्म बदल करके ब्राह्मण शूद्र अपना कर्म बदल दे और मांस मछली न खाए, अंडा गोश्त न खाए, शराब न पिए और भगवान का भजन करे, तो हम ब्राह्मणों को छोड़ करके उन्हीं की ही पूजा करें। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण भी यदि अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, तो उससे वो शूद्र अच्छे हैं जो कि भगवान का भजन करते हैं, तत्वज्ञ है, जिनमें सदाचार है, सही सुनता है, जिनमें दया गुण है, ऐसे तब वो शूद्र उसको कहने से ये भूल होगी। इन सब विचारों के लिए युद्ध हुआ, अंत में परास्त हुए। कौन? परशुराम जी परास्त हुए। राम की सहिष्णुता इत्यादि गुणों से वो परास्त हुए। इसके बाद में राम मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो निंदनीय हो। कुछ किए, उनको सीता जी का त्याग नहीं करना चाहिए था, किंतु लोक अपेक्षा के लिए किया। यदि कृष्ण होते तो ऐसे विचार को न जाने कहां उड़ा देते। श्रीमती जी को कभी उन्होंने त्याग किया? कभी नहीं त्याग किया। जो उनको जिस रूप में आया, मैया बनकर के पूतना भी आई तो उसको भी माता की गति दे दी। एक सखा बनकर के आया प्रलंबासुर, तो उसको सखा को गति मार करके दी। इस प्रकार से जो उनके पास आया उसको लौट आया, ने उसी रूप में उसको ग्रहण किया, उसके प्रेम को ग्रहण किया, प्रेम को प्रधान माना। रामचंद्र जी ने प्रेम को प्रधान मानते हैं, मर्यादा को अधिक दिया। इन सब चीजों का अवतार के जो कारण है, इनको यदि समझाया जाए, बुझाया जाए, तब हम धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। केवल जाति और शूद्रता और राजनीति, राजनीति तो एकदम जहन्नम को ले जाएगी आज की विशेषता, उसमें कोई नीति नहीं रह गई। इसकी प्रतिष्ठा करने के लिए राम आए, नीति की दुर्नीति का उन्होंने दूर कर दिया। इसके बाद में आए बलदेव जी। बलदेव जी कौन है? ये ब्रज के रोहिणी मैया के पुत्र हैं, कृष्ण के लीला के परिकर हैं। इसके बाद में आए कौन? बुद्धदेव। इसके बाद ही तो बलदेव के बाद में बुद्धदेव, बुद्ध और कल्कि। बुद्धदेव भगवान के अवतार किस लिए माने जाते हैं? वेदों में लिखा है जो पशुओं की बलि दी जाए, उन्होंने इसका घोर विरोध किया। पशुओं की बद नहीं होना चाहिए। वेद भी यदि लिखा है तो वो ठीक नहीं है। वेद एक दूसरे तरह से उसको लिखा है, पशुओं को बलि माने पशुओं को मन ही मन में समर्पण कर दिया जाए भगवान को स्पर्श करके। पशु माने क्या? पशु माने कहते हैं आत्मा को, आत्मा का समर्पण कर दिया जाए। मारने के लिए कहीं नहीं लिखा, शराब पीने के लिए नहीं कहा गया, इसका विधान नहीं है, विवाह का कोई विधान नहीं है। जो कोई विवाह करे तो विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि ये बनी हुई है प्रवृत्ति, इसलिए अपनी प्रवृत्ति को संकोच करने के लिए इधर उधर मत बगल में झांको, इसलिए एक स्त्री के साथ में एक पति रहे बस, इसलिए विवाह की व्यवस्था की गई। यदि सभी लोग भगवान का भजन करते, ब्रह्मचर्य रहते, तो विवाह की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, यदि आत्मसंयम करें। इसलिए ये सब विवाह इत्यादि प्रवृत्ति को संकोच करने के लिए, मदिरा पान के लिए यज्ञ में एक प्रविधान होता था, यज्ञ करने के बाद में उसको स्पर्श कर सकते, पीने के लिए नहीं। वो भी किस चीज से बनता था? ये मधु को कहते थे शराब, फूलों के रस से बनती थी, देवताओं में वो क्या सोमरस, सोमरस माने एक लता है, उसमें कोई बदहोशी नहीं आती थी। आज जैसे शराब पी करके और नाली में गिर जाते हैं कुत्ते, उनका मुख धोते हैं, ऐसा नहीं था। गंदी ग्लोज, गाली ग्लोज करते हैं, आचरण से भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं था। इसका विधान था केवल यज्ञ के समय में वो ऐसा कर सकते हैं, वो भी मांस खाएंगे नहीं, जो अत्यंत भ्रष्ट जाति के, अत्यंत कलुषित विचार के थे, वो लोग वर्ष में एक बार यज्ञ करेंगे और यज्ञ में सबको दे करके और तब लेंगे। कौन लोग? जो कि दिन रात मांस खाते हैं, उनके लिए कहा जी वर्ष में एक दिन करो। जब कुछ करने लगा कहिए भाई देखो ये 5 वर्ष में एक बार करना, इसके बाद कहेंगे तो तुम इससे दूर हो जाओ। शादी करके हमारे यहां व्यवस्था थी 50 वर्ष के बाद में स्त्री को छोड़ करके या स्त्री पति को छोड़ करके दोनों बान प्रस्ताव लंबन करके भगवान का भजन करेंगे। यदि ऐसे ही बात ही भोग की ही बात होती तो दोनों को सब समय के लिए रख देते, इसलिए विवाह की व्यवस्था नहीं बल्कि भगवान का भजन करने के लिए ये सब विधियां बनी थी। प्रवृत्ति को धीरे धीरे संकुचित करते हुए निवृत्ति की तरफ मिली जाए। शराब इत्यादि के संबंध में भी इसी तरह से समझना चाहिए। इसलिए बुद्ध देव ने, गौतम जी ने, गौतम और बुद्ध जी ये अलग अलग हैं, एक भगवान बुद्ध हैं और एक शुद्धोधन के लड़के जो हिमालय की नेपाल की तराई में जन्म लिया, ये मनुष्य थे। ये भगवत बुद्ध काशी में जाकर के उन्होंने समाधि से उनको कुछ ज्ञान हुआ और जिनके जन्म स्थान पर उन्होंने कुछ उनको ज्ञान मिला वो गया में जो जन्म हुआ वो भगवत बुद्ध थे। उन्होंने कहा अहिंसो परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। यदि बलि देना ही अच्छा है तो तुम अपनी बलि दे दो, अपने बेटे की बलि दो, पशुओं की क्या बलि देते हो? ऐसा कोई करते हैं? हाँ एक कर किया, अभी अभी पेपर में अभी आ जाया था, कल आया था ना, क्या है? वो अपने बेटी को देने जा रही थी बलि, तो उसका ससुर ने कहा जी इसकी बलि क्यों दे रहे हो, हम ही दे दो। तो सचमुच उसने काट करके उसकी बलि दे। ऐसी ऐसी जघन्य बातें हैं। जितनी देवी आती हैं सब चुड़ैल हैं और मनुष्य हैं तो वो राक्षस हैं। जिनको आता है उसको उसको अच्छी तरह से दंड, हमारे यहाँ पर हमारे उनके समान एसपी के समान और तुम्हारे समान थे, दो लड़के गए, एक स्त्री पर आती थी वो क्या देवी की भर, तो ये जाकर के कहा जी हमारा बेटा स्वस्थ है कैसे ठीक होगा, तो तुम्हारे घर में भूत है मैं उसको झाड़ दूंगा तो ठीक हो जाए। अच्छा बस उसको लेकर के उलाट करके फेंक दिया, तो ये देखो हमको बाधा देने के लिए हमारे यहाँ है। बस उसका उतर गया भूत और उसका देवी उतर गई भाग कर, एक थप्पड़ जहां लगाया ये सब भाग जाएंगे। उनमें आजकल बहुत से लोग विश्वास रखते हैं जो ऐसे जिन पर भर आते हैं, ये समझिए ढकोसला है, ये इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने इस चीज को बंद करने के लिए कहा, लोग सुअर के बच्चों की, बकरे के बच्चों की बलि देते हैं, तो अपने बेटे को बलि दें, अपनी बलि दे दे, अपने खुद को दे देना। देवी जगत की माता हैं, वो दूसरों की बलि लेकर के प्रसन्न होंगी अपने बेटे की? तो ये सब गलत तरीका है, इसका बगावत उन्होंने किया था, इसलिए ये भगवान के अवतार ये माने जाते हैं। और अंत में कल की देव, जिस समय में चारों तरफ में घोर अन्याय होने लगता है, कोई भी भजन नहीं करता है, परस्पर लड़ते हैं, स्त्रियां केवल बालों से सौंदर्य अपना बनाती हैं, जहां होठ रंगती है ब्रह्मचर्य इत्यादि के द्वारा, होठ नहीं, पुरुष लोग आजकल स्त्री बन करके बड़े बड़े केश रखते हैं और उनकी प्रसिद्धि होती है फिल्म स्टारों में, बंबई में जितने भ्रष्ट चरित्र के जितने लोग हैं वहां पर जाए और उनकी बड़ी आवभगत होती है, जैसे क्रिकेट के प्लेयरों की हो रही है, देखने के लिए लाखों लोग जाएंगे भ्रष्ट लोगों को देखने। कल्कि जी ऐसे लोगों को मारने के लिए, ये धर्म में जिनकी इतने, सबको मार करके खत्म करके और फिर सत्यजुग का, किंतु इस कलिकाल में नहीं होगा, कलिकाल जी ने में कल्कि जी नहीं आए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने चारों तरफ नाम का जो प्रचार किया है, कोई भी हो, शूद्र हो, डोम हो, मैतर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी यदि भगवान का नाम लेगा तो वो ब्राह्मणों का लाखों पूज्य रहेगा, इस चीज को समझो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आज 500 वर्ष हो गए जो नाम प्रचार किया, आज पृथ्वी में सर्वत्र ऐसा कोई देश नहीं है, राष्ट्र नहीं है जहाँ के लोग भगवान का भजन नहीं करते। अभी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसमें कम से कम तो 25 राष्ट्रों के विदेशों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, कोई अमेरिका से आए हैं, कोई इंग्लैंड से आए हैं, कोई कहां से आए हैं, पचासों देश के लोग अभी भी, जब सब चले गए हैं तो भी अभी यहां पर बैठे और सभी लोग हरिनाम कर रहे हैं। जिस रूप में भी हरिनाम करते हैं श्रद्धा के साथ में, उनकी क्या गति होगी? अच्छी गति, उनको मारने के लिए नहीं आएंगे। ये देखते हैं कि क्रमशः बढ़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं धन्य कली। इसमें कृष्णचंद्र जी कल्कि के रूप में नहीं आएंगे, बल्कि कल्कि का विभाव चैतन्य महाप्रभु के अंदर में प्रवेश कर गया और उसके द्वारा जगत में जो हरिनाम करेगा, जो हरिनाम कराएगा, सबका अपने आप उद्धार, उनकी चित्त वृत्ति।
हाँ,
नमीन की चाहे जब रहने दीजिए, इसलिए खूब उत्साह के साथ में कर रहे हैं। बंद कर दे। तो रामचंद्र जी का जन्म आज हुआ, सभी का चित्त सुप्रसन्न होना चाहिए। आज के दिन में जिसका मुख उतरा हुआ रहेगा, मुरझाया रहेगा, माने जैसे वो क्या आदमी है, आदमी है या आदमी का पैजामा है। आज सुप्रसन्न होकर के भगवान का भी आरती देखेंगे, भोग आरती, भोग हो गया है ना, आप कह जो ये आरती करें और सबको चरणामृत, बिना चरणामृत लिए किसी को मत जाने देना, जरूर सभी लोग चरणामृत लेकर के तब जाएंगे। ठीक, और प्रसाद भी है थोड़ा थोड़ा, रामचंद्र जी के उपवास का वजह से व्रत भंग नहीं होगा, कल सवेरे पारण किया जाएगा रामचंद्र जी की या कृष्ण की, अपने इष्ट देव की पूजा करके, और तब फिर उसका पारण किया जाएगा 9:38 के पहले। अब आरती करो, एक महामंत्र कीजिए तो खूब ठाट से, खूब जोर से जमा करके। नमीन की चाय जब रहने दीजिए, इसलिए खूब उत्साह के साथ में कर रहे हैं। बंद कर दे। तो रामचंद्र जी का जन्म आज हुआ, सभी का चित्त सुप्रसन्न होना चाहिए। आज के दिन में जिसका मुख उतरा हुआ रहेगा, मुरझाया रहेगा, माने जैसे वो क्या आदमी है, आदमी है या आदमी का पैजामा है। आज सुप्रसन्न होकर के भगवान का भी आरती देखेंगे, भोग आरती, भोग हो गया है ना, आप कह जो ये आरती करें और सबको चरणामृत, बिना चरणामृत लिए किसी को मत जाने देना, जरूर सभी लोग चरणामृत लेकर के तब जाएंगे। ठीक, और प्रसाद भी है थोड़ा थोड़ा, रामचंद्र जी के उपवास का वजह से व्रत भंग नहीं होगा, कल सवेरे पारण किया जाएगा रामचंद्र जी की या कृष्ण की, अपने इष्ट देव की पूजा करके, और तब फिर उसका पारण किया जाएगा 9:38 के पहले। अब आरती करो, एक महामंत्र कीजिए तो खूब ठाट से, खूब जोर से जमा करके।